एक्सपीरियंस, पर्टिकुलरली एक ऐसा वर्ड जो कोई भी स्किल्स को या कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकता है। और डॉक्टर आशीष कुमार सिंह एक ऐसे डॉक्टर है जो लास्ट 20 ईयर्स से वो इंडियन हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। वो लास्ट 20 ईयर्स से एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार उनको उनसे बात की है, एंड ही इज सीरियसली ए सुपर नेचुरल पर्सन। उनकी मेंटल स्टेबिलिटी और उनकी फिजिकल स्टेबिलिटी सीरियसली बहुत ज़्यादा सुपर है, एंड दैट्स व्हाई आज इनका पॉडकास्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष सिंह जी, आज हमारे साथ हैं आप पॉडकास्ट के लिए। TUC माइंड टॉक्स में आपका स्वागत है पहले तो, और हम मोस्ट ऑफ थोड़ा ट्राई करेंगे कन्वर्जेशन को बहुत ज़्यादा डीप में लेके जाने को, क्योंकि हमारी व्यूअर्स जो भी है वो डीप कन्वर्जेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ट्राई करेंगे इंस्पिरेशन थोड़ा ज़्यादा करें। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आए।
थैंक यू फॉर आपने बुलाया मुझे यहाँ पे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं उसका सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जिसको आराम से समझ जाए जो भी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लैंग्वेज स्पेशली मेडिकल टर्म्स के लैंग्वेज में यूज़ करूँगा तो शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी भाषा में और आपके जो भी सवाल हैं हम उसको
क्लियर कर सकें,
पूरी क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी फिलहाल एक सक्सेसफुल पर्सन हो अपनी लाइफ में, एंड आपने अभी फिलहाल ये एक लेवल है, पोजिशन है, आपने वो अचीव किया है एक सक्सेस का, बट वो लेवल तक पहुँचने के लिए एक जर्नी होती है, और वो जर्नी अगर आप अच्छे से करो, अगर आप अच्छे से इंस्पिरेशन आपके साथ हो, वो जर्नी अच्छे से मोटिवेशन अगर आपके साथ हो तो वो जर्नी अच्छे से निकल सकती है। मुझे जानना है कि वो जो बैक स्टोरी थी, आप एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर हो फिलहाल अभी, तो जो बैक स्टोरी थी वो क्या थी, क्योंकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर को बनने में अभी जो आप बाहर हो फिलहाल, अंदर से जो बैक स्टोरी थी वो जाननी है मुझे आपकी।
मेडिकल कॉलेज पढ़ाई करने के बाद में जिसे हम प्रैक्टिस में आते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस में, तो उसमें स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई होने के बाद में स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं कहीं भी, लाइक किसी और हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में सीखने के हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ और ले लो, कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा सब कुछ अलग होता है, और जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं लाइक प्रैक्टिस में, तो उसके बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हाँ, हम तो वो जो जर्नी वहाँ हमारा जो स्टार्ट हुआ, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास से प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और तब से लेके अभी तक डे बाय डे मैंने स्टार्ट किया, तब से मुझे तभी से सीखने का ऐसा, और जैसे जैसे मैं मेडिकल फील्ड में अंदर डीप में चले गया प्रैक्टिस में, जो पेशेंट्स आते थे पेशेंट को देखने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी, हो सकता है। लेकिन जब हमारे सामने वो चीज पेशेंट हमारे सामने आ रहा है, कंप्लेन करता है, उसके जो सिम्टम्स हैं वो हम ये करते हैं, फिर हम आगे जो भी उसे क्रॉस आर्गुमेंट जो भी होता है हमारा, कि आपको ऐसा भी होता है, तो वो जाने की जो जिज्ञासा होती है हमारी बढ़ती है डे बाय डे। हम आज मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट डे 2 पेशेंट देखा था, उसके बाद डे बाय डे जो भी चीज़ें बढ़ती गई, पेशेंट बढ़ते गए, उस हिसाब से बहुत डीप में जाने लगे, और इंटरेस्ट ऐसे बढ़ते गए आगे आगे कि वहां तक कि आज 20 साल 21 साल हो गए मुझे अप्रॉक्सीमेटली प्रैक्टिस करते हुए। ये लाइफ अगर मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा भी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी 20 साल की लाइफ और अभी मुझे कुछ बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं पता चल रहा है।
तो फिलहाल जैसे अपन COVID-19 की बात कर रहे थे, ये एक ट्रेंडी क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल कोविड के ऊपर चल रहा है कि वैक्सीन इंडिया में फिलहाल 2 है, तीसरी आ रही है स्पुटनिक, कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है, तो ये 2 जो है वो पर्टिकुलर, ये सबसे पहले ये 2 वैक्सीन क्यों निकाली है, अगर अगर एक भी है गवर्नमेंट के पास तो वो एक से ही सबको दे सकते हैं ना, तो 2 क्यों?
कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है, ऐसे जो भी जब भी जैसी कोविड आया, नया वायरस आया वर्ल्ड में, तो हर देश उस चीज के बारे में रिसर्च करने में लग गया, ठीक है, और रिसर्च करने के बाद जैसे ही लोगों को जो उनके साइंटिस्ट थे उनको उस चीज के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर जब बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उनको लगा कि हम अब इस वैक्सीन को हम आगे दे सकते हैं लोगों को,
हाँ
दे सकते हैं। उस समय इंडिया में, मतलब इंडिया की बात मैं कहूँ तो इंडिया में जब भी इसके पहले कोविशील्ड जो था वो दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी है, तो वो कंपनी ने ऑलरेडी बना के रिसर्च भी हो चुका था, उन्होंने देना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो भारत बायोटेक था उस समय तक रिसर्च ही चल रहा था, फाइनल कुछ भी हुआ नहीं था उस समय। तो कोविशील्ड आ गया था, जैसे आया इंडिया में आया तो उसके ऊपर जो भी स्टार्टिंग में उस समय भी वो रिसर्च में ही था,
यहाँ पे इंडिया में आते हुए।
जब यहाँ इंडिया में आया तो उन्होंने देने का तो स्टार्ट कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं था रिसर्च में, लेकिन जैसे जैसे देते गए वैक्सीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट किया उन्होंने कुछ जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक से स्टार्ट किया देने को 2021 से। तो उसके बाद से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स, बीएमसी में काम करने वाले, पुलिस वाले, जो भी है बाहर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिया गया। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ हुआ नहीं। अब ये वैक्सीन है, ये आपको सिर्फ 80% 85%
कवर करती है, मेडिसिन नहीं है, पहली बात ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीबॉडीज है।
आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं या फिर हम कहीं बैठे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी चीजें रहेंगे। तो लेकिन हमारा बॉडी में वैसे एंटीबॉडीज रहते हैं जो उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अभी बताया कि ये एक नया वायरस है, अब नया वायरस है तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। तो वो वैक्सीन के थ्रू हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं, हाँ, तो वो वैक्सीन या आप, लेकिन वो आपको 80 से 85%, सपोज कोई वैक्सीन है 85%, कोई 90%, अभी जितने हर कंट्री के अपने अलग अलग वैक्सीन है, अलग अलग उनका डेटा है कितना उसका इफेक्ट
हाँ,
है।
इफेक्ट है हाँ।
हाँ, तो उस तरह से जो हमारे यहाँ कोविशील्ड स्टार्टिंग में आया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्ट हो गया देने का, उस समय हमको ये गाइडलाइन था कि 28 डेज में सेकेंड डोज रिपीट करना है। तो उस समय भी लोगों के मन में बहुत डर था कि ये वैक्सीन ले रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या होगा, क्योंकि तो नया चीज था।
अभी भी नहीं,
हम भी डॉक्टर्स भी बहुत उस चीज को लेके ये थे कि हम नया एक एंटीबॉडीज अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन सब लोग अगर यही सोचेंगे कि कुछ हो गया तो क्या, तो फिर देंगे किसको वैक्सीन। तो हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत सारे लोग ने काफी डिले किया लेने के, लेकिन हमने जैसे ही वैक्सीन लॉन्च हुआ इमीडिएटली लिया, फर्स्ट कोविशील्ड लिया, 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लिया। लेकिन डे बाय डे उसमें भी अभी आगे आपने देखा कि उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये तो आगे आते हैं कि
म्यूटेंट तो चेंज होने ही
म्यूटेंट चेंज हो रहा है, प्लस दूसरा वैक्सीन जो कोविशील्ड का जो ये है, जैसे कि अभी सेकेंड डोज जो देने का जो टाइम है वो आपका 28 डेज था, बाद में हो गया फिर कुछ बढ़ के 8 to 10 वीक समथिंग ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद में अब और बढ़ के और भी ज्यादा हो गया, अब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के बाद में आ रहा है, 84 to 112 डेज के बाद में।
ये वैक्सीन कम है इंडिया में, ये वजह से होता
नहीं,
है या
ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी चीजें नहीं सोचना आपको वैक्सीन के बारे में। हमने अभी कहा कि एक एक वैक्सीन बनाने के लिए पहले जो एक एक वैक्सीन लगे, जो एट बर्थ जैसे लगते हैं, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीजल्स और MMR, ये जो वैक्सीन, एक एक वैक्सीन जो लगे हैं, जो आपको बचपन में लगते हैं, एक एक वैक्सीन बनाने में 10 10 15 15 साल लगे हैं,
अच्छा
बहुत समय लगता है उन सब चीजों को करने में। लेकिन
ये
जो वैक्सीन है ये इतने जल्दी बना हुआ, तो उसपे और भी रिसर्च चालू होते, जैसे जैसे उसमें कुछ नया कुछ साइंटिस्ट लोग को मिलता है तो वो आगे जो भी ये है काउंसिल है, ICMR जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, उनको उस हिसाब से आगे गाइड करती है, बताती रहती है, और ये आगे बहुत लंबे समय तक, ये खाली कोविशील्ड के लिए ऐसा नहीं है, ये कोवैक्सीन के लिए भी ऐसी बहुत सारी गाइडलाइन आगे और भी आगे आएंगे। लेकिन इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ कोई चीज बचा सकता है तो वो सिर्फ वैक्सीन, या फिर आपके अंदर कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करो, जो कि एंटीबॉडीज है कि नहीं है आपको भी नहीं पता है, एंटीबॉडीज उसी के अंदर रहेंगे। जैसे अगर मुझे आज कोविड हो गया तो हो सकता है थोड़ा दिन के बाद मेरे अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए स्टार्टिंग में वैक्सीन जब भी नहीं था तो प्लाज्मा डोनेशन का आपने सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट करते थे लोग, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट वो करते थे एंटीबॉडीज मेरे अंदर, एक बार मुझे कोविड हो गया तो मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, तो आपको अगर कोविड हुआ है लेकिन आपके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, तो अगर मेरे एंटीबॉडीज आपके अंदर डाले जाएंगे तो आपका रिकवरी रेट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। प्लाज्मा को अभी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, उसके बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा था।
अच्छा,
या फिर उसके और जो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि साइंटिस्ट ने रिसर्च किया होगा, लेकिन उसको अभी जो प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसे हटा दिया है। अभी जो भी है सिर्फ पेशेंट को वैक्सीन लेना है, वही आपको सिर्फ बचा सकता है। बाकी आपको अगर कोविड हो गया एक बार तो सेकेंड टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन नहीं होगा ऐसा कुछ डेटा नहीं है अभी कि एक बार कोविड हो गया तो वापस को नहीं होगा। हमने अभी भी इसीलिए हमने कहा कि एक डेढ़ साल हो गया, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट रिसेंटली हमने देखे हैं जो कि एक महीना पहले कोविड हुआ था और बीच में रिपोर्ट निगेटिव आया और विद इन वन मंथ वापस से पॉजिटिव हो गया पेशेंट। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं।
अच्छा, ये सिंपल एक बात जानिए, बहुत लोग के माइंड में चल रहे आप, जैसे आपने बोला हवा चल रही है, क्या सही में वैक्सीन सेफ है? परफेक्ट, पूरा क्लियर है, 100% सेफ,
100% सेफ है,
100% सेफ है। मतलब कैसा है कि आप इस समय दूसरा कोरोना वायरस जो है उसको बचाने के लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई अभी तक नहीं है। जब कोई चीज की दवाई नहीं है तो आपको और कौन बचा सकता
है? नहीं,
कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अब अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हो तो कोविड से कोविड होगा, होने के चांसेस रहेंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूं होगा, होने के चांसेस रहेंगे। और उसके लिए आपको अगर कुछ किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज हुए, कुछ भी हुआ, तो उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन वैक्सीन लिए हो तो आपको सीधी सी बात है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम
रहेंगे,
तकलीफ नहीं होगा, आप हॉस्पिटल आईसीयू तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, या फिर गए भी तो आपको बहुत ही रेयर केस में कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन, अगर बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोविड के ही वायरस है, बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि जब हम कहते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास गए, हम गए थे तो एक खाली खून कितना है जानने के लिए, लेकिन जब ब्लड टेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा उसके साथ में 3-4 बीमारियां और भी आ गई, तो वैसा हो जाता है। तो अगर गए तो वो दूसरे किसी भी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट का जो डेथ हो जाता है या फिर और ज्यादा सीरियस हो गए पेशेंट, तो और भी बहुत सारी चीजें होती है उसके पीछे, न कि कोविड की वजह से। लेकिन वैक्सीन इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही लेना चाहिए, और वैक्सीन 100% सेफ है, वो आपको लेना चाहिए। इसके लिए इस चीज को लेके बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन उस चीज को आपको इग्नोर करना है। वैक्सीन की वजह से कोई अभी तक नहीं मरा है, और अगर एक दो केस हुए भी रहेंगे तो अगर उसके बारे में रिसर्च चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे जहां तक उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं।
इंडिया में तो मैं जितना मेरा रिसर्च है, इंडिया में ऐसे कोई हुआ नहीं है।
अब हुआ भी होगा
उसके बाहर,
लेकिन आप इस तरह से नहीं सोच सकते ना कि हम
एक जन को अगर कुछ हो गया तो इसका मतलब हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हाँ, आप 1,00,000 में अगर एक जन को या दो जन को कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो भी गया, तो इसका मतलब आप वैक्सीन नहीं लोगे, ऐसा नहीं। आप रोड पे चल रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो, कल एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका हार्ट पे टूट जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोग ऐसे चलना बंद कर देंगे, वो तो नहीं हो सकता है। तो हाँ, अगर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे उसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, वैक्सीन ले लेके सब लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कदम उठाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सेफ है। आप सभी लोग, और मैं आप सभी लोगों से भी विनती करूंगा कि आप सब लोग इस चीज को लें, और इसके बारे में किसी को भी मिसगाइड ना करें, जितना हो सकता है आप ले, और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें कि आप वैक्सीन लो, 100% सेफ है, ऑफकोर्स आपकी लाइफ बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे अंदर जो वैक्सीन लिए हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए, कोविड हुआ, फिर भी हंसते खेलते वापस आ रहा है।
अच्छा, सिंपल वे में कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड-19 ये फिलहाल ये करंट टाइम से, क्योंकि सेकंड वे एक ऐसा ये कोई वेव नहीं है, मुझे लगता है ये सुनामी थी जो अभी आई थी, और सही ऐसे मुझे बहुत रिसर्चेस दिखते हैं। चल पहले क्लियर कर दो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए।
प्रिकॉशन के तौर पे उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है। जो चीजें जो बहुत दिन से ऑलरेडी चली आ रही, गवर्नमेंट भी बोलती है, हमारे मीडिया के लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर आप उतना भी फॉलो करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल डिस्टेंसिंग, अननेसेसरी आप बाहर निकलते हो, किसी के साथ कॉन्टेक्ट में आते हो, तो वो एक प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंडरी, मास्क आपको निकालना नहीं है, मास्क और दूसरी चीज, अगर मास्क लगा के आप बाहर जा रहे हो तो जितना कोशिश करो कि आपका ये जो हाथ है, दोनों हाथ इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, वो आपको केयर करना है। इचिंग हो रहा है, कभी कभी होता है किसी को खुजली आ रही है, तो मास्क नीचे किया या बीच में गए, कुछ खाने पीने की चीज मिली, खा पी लिए, फिर वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना, और भीड़ भाड़ वाली जगह ऐसी जहाँ भी 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हो वहाँ पे जितना हो सके एक डिस्टेंस बनाना।
जैसे सेकंड वेव चल रहा है फिलहाल इंडिया में, थर्ड वेव हो सकता है सीरियसली? जैसे अभी फिलहाल करंट, जैसे करंट तो फिलहाल
हो सकता है, लेकिन
ये सेकंड वेव आया है तभी, द फर्स्ट वेव जो आया था उसको लोगों ने इतना सीरियसली नहीं सीरियसली लिया था उस समय, लेकिन जैसे ही वो चीज धीरे धीरे कम हुआ तो लोग वापस एकदम सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई। वैसा हो गया आम भाषा में बोलो तो, कि लोगों ने मास्क निकाल दिया, ट्रेन में ट्रेवलिंग करना, बसों में जाना, मार्केट में, दुकानों पे, कहीं भी जाना लापरवाही बहुत किया, उसी की वजह से सेकेंड वेव आया है। और थर्ड वेव अगर आया भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन लोग अब काफी हद तक अलर्ट हो गए हैं, काफी केयर करने लगे, इतना डर गए हैं इन सब चीजों से, सेकेंड वेव से इतना ज्यादा डर गए हैं कि
मुझे नहीं लगता है।
और अगर सेकेंड, अगर थर्ड वेव अगर भगवान न करे आ भी जाए तो यो आई गेस वैक्सीन की जो पावर है,
वैक्सीन अगर आपने मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लिया है तो इतना
प्रॉब्लम नहीं होगा। जो तकलीफ जो अभी लास्ट सेकेंड वेव में लोगों ने इतना तकलीफ झेला है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए जो कुछ इंजेक्शन वगैरह जो कुछ दवाइयां हैं वो नहीं मिल रही हैं, इस हद तक नहीं जाना
पड़ेगा।
इस हद तक नहीं जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन आपको लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
अच्छा ये एक सिंपल मुझे क्वेश्चन था कि सेट फर्स्ट वेव में तो ज्यादा इतना एक्सप्लोजन लोगों का भी नहीं होता कोविड से, बट सेकंड वेव में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, ये सुनामी जैसे मैंने बोला ये सुनामी है। तो डॉक्टर्स की हालत क्या है इंडिया में, क्योंकि आई गेस मैंने जहाँ तक सुना है कुछ करीबन 50 पेशेंट्स के ऊपर सिर्फ एक या दो डॉक्टर्स अभी है फिलहाल इंडिया में, और डॉक्टर्स अभी इंडिया में कम है, पेशेंट्स भरते जा रहे हैं, बेड्स भी नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर्स बहुत कम है, तो उन पर प्रेशर कितना है फिलहाल?
ये ऑफकोर्स होता है, क्योंकि ये जैसे आपने बताया कि एक पैंडेमिक हो, और पैंडेमिक क्या कोई भी चीज़ आपको बता के कि मैं अगले साल आने वाली हूँ वैसा नहीं होता। अगर वैसा होता तो गवर्नमेंट और हर सभी लोग उस चीज़ को काफ़ी हद तक प्रिपेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन स्टार्ट हुआ अभी। हमारे डॉक्टर्स की कमी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, डॉक्टर्स हैं इंडिया में लेकिन अच्छे 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 डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये पैंडेमिक है, एक साथ में जहाँ आ रहे हैं तो एक बिल्डिंग से अगर हम ये करें तो एक बिल्डिंग में 8-10 लोग एक एक साथ में निकल रहे हैं, तो ऐसे इतनी एक साथ में अचानक से आएंगे तो
प्रॉब्लम्स तो
क्रिएट हो गए। और ये सभी चीजें सबको मान के चलना चाहिए कि आप जैसा हमेशा नॉर्मल समय नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटलाइज होते हो, एक पैंडेमिक है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि आपको भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए,
और गवर्नमेंट का साथ देके ही सभी चीजें।
आई गेस कोविड-19 जो है वो मेडिकल फील्ड अभी मेडिकल में पढ़ने भी आई गेस स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने में, तो अगर ये अभी फिलहाल प्रेशर चल रहा है इंडिया में तो जो अभी जो स्टूडेंट्स है जो मेडिकल का पढ़ रहे हैं सेकंड थर्ड ईयर में है, तो उनको ऐसे प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर कम करने के लिए वो लोग भेज सकते हैं ना गवर्नमेंट, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए?
नहीं अभी
नहीं भेज सकते। अब जो अभी कोई स्टूडेंट है अभी पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका इंटर्नशिप नहीं हुआ है अभी तक, तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं भेज सकते। हॉस्पिटल में जैसे अभी जो क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जो भी ऐसे सब बनाए हुए हैं, या फिर हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने जो बहुत जगह जगह बड़ा बड़ा सेंटर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम किसी को नहीं भेज सकते ना। तो पेशेंट को, डॉक्टर को भी एटलीस्ट बहुत सारी चीजें होती है, खाली ऐसा नहीं है कि पेशेंट को खाली कोरोना का ही ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट अगर वहाँ पे एक जगह पे एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पे 1000 पेशेंट है, तो 1000 पेशेंट नो डाउट सबको कोविड वाले ही है सब, लेकिन दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसमें। 1000 पेशेंट तो 1000 में से किसी को हो सकता है कि सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करना पड़े, ऐसे में शिफ्ट करना पड़े या फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़े, तो हम किसी को नहीं भेज सकते। और ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट जितना है काम कर रही है, जो भी है अब काफी हद तक उस चीज को कंट्रोल में भी लाया गया है, और आई थिंक बहुत जल्दी कंट्रोल में आ
जाएगा।
आई थिंक 1-1.5 महीना और लगेगा, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा आप सभी लोगों से एक ही विनती है कि आप सब लोग जितना हो सकता है वैक्सीन को जोड़ दो। एक वेव था, सेकेंड वेव वो चला गया या फिर जा रहा है, अब पेशेंट धीरे धीरे काफी हद तक कम हो रहे हैं, सब लोग काफी केयर भी करने लगे हैं उस चीज को लेके, अब वैक्सीन के लिए एक ही चीज करना है कि वैक्सीन को ज्यादा जोर देना है, वैक्सीन जितना देंगे उतना अच्छा होगा। कोविड को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, बाकी कुछ नहीं।
अच्छा, जैसे अभी हमने कोविड-19 की बात की, फिलहाल अभी एक नया एक वायरस सुनने में आ रहा है ब्लैक फंगस करके, आपने आगे सुना रहेगा ब्लैक फंगस। ऐसा बोलते हैं कि वो जो आईज है उसकी विजन ही हटा देते हैं, तो ये कुछ अगर कुछ नया है तो आप जानते
हैं? ब्लैक फंगस जो है
ये नया है ऐसा नहीं बोल सकते, ये ऑलरेडी है, ये फंगल इन्फेक्शन है एक तरह का, जो कि ऑलरेडी ये भी बहुत लोगों को बाहर हवा में हर जगह रहता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी यहाँ भी वही चीजें ये होती है कि हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो वो नहीं होगा ऐसा ये है। लेकिन जो कोविड के पेशेंट हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया हुआ हॉस्पिटलाइज हैं या फिर हॉस्पिटल में हर एंटीबायोटिक लिया है, दवाइयाँ लिया है, प्लस कुछ किसी कारणवश उनका इम्यूनिटी वहाँ पे भी वीक होता है, हम इतना हायर एंटीबॉडी देते हैं पेशेंट को, उनका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक होता है वहाँ पे, एक चीज। दूसरा सा, ये बीमारी से पेशेंट को बचाने के लिए, उनका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है ऑलरेडी, उसके लिए स्टेरॉइड देते हैं। प्लस स्टेरॉइड एक ऐसा ड्रग है जो कि आप जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको एक प्लेन पैरासिटामोल क्रोसिन दिया, क्रोसिन का इफेक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन हमने के साथ में एक स्टेरॉइड ऐड कर दिया तो वो एकदम बूस्टिंग का काम करेगा, फट से उसका एक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा, पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी स्टेरॉइड देते हैं पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने मन से स्टेरॉइड खाते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मुझे कुछ हुआ, बुखार आया, हमने ये दवाई लिया, उसमें स्टेरॉइड भी लिया, हमको आराम हो गया, तो हमारे और भी आजू बाजू वाले जितने भी हैं
उनको भी कुछ हुआ, एक दवाई ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो।
स्टेरॉइड बहुत कॉमन है?
स्टेरॉइड कॉमन नहीं है, स्टेरॉइड बहुत ही हानिकारक ड्रग है, लेकिन
अगर उसका सही उपयोग किया गया तो बहुत अच्छा ड्रग भी है। तो अभी जो हुआ क्या कि जो स्टेरॉइड बहुत ज्यादा यूज होता है, हाई डोज में डॉक्टर देते हैं, अगर एक डॉक्टर के सुपरविजन में आप लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग स्टेरॉइड का बहुत गलत भी इस्तेमाल हुआ है इस पैंडेमिक में, तो उसकी वजह से होने के बाद में जिस कोविड ठीक हो गया, पेशेंट घर पे आ गया थोड़ा जन, क्योंकि उसका इम्यूनिटी थोड़ा सा उस समय तो वीक रहता है हॉस्पिटल से आने के बाद में, और ये जो फंगस है ये नॉर्मली बाहर हर जगह रहते हैं, तो आपने अगर प्रिकॉशन नहीं लिया और किसी कारण बस आपको ब्लैक फंगस
हो गया,
जिसको कि माइकोसिस जो बोलते हैं वो हो गया किसी कारणवश, तो फिर आपको उसके जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू होंगे, तो आपको अगर इमीडिएटली आपने तुरंत कंट्रोल कर दिया, समझ गए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको उसके सिम्टम्स पता करना
है, सिम्टम्स
उसके सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे आपको फीवर आएगा, बॉडी पेन होगा, आँख इधर साइड साइड में पूरा रेडनेस आ जाएगा, गले में भी दर्द होगा, तो ये सभी चीजें होंगे। ऐसा कोई एकदम क्लियर कट ऐसा सिम्टम्स नहीं है कि आपको यही सिम्टम्स है तो ही ब्लैक फंगस है, जरूरी नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया ना ये चीजें, फीवर भी आ सकता है, बॉडी पेन भी हो सकता है, गले में दर्द वगैरह हो सकता है, आंखों के साइड में रेड रेड हो सकता है, ये सभी चीजें अगर कुछ होती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, और अगर सही समय पर आपने ट्रीटमेंट किया तो उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है,
इसका मेडिसिन है।
और इसके बाद भी आपको प्रिकॉशन बहुत लेना है, प्रिकॉशन लेना है, जैसे भी मैंने बताया कि आपको कोविड के लिए जो प्रिकॉशन लेते थे वैसे इसमें भी लेना है, कि आपको बाहर नहीं निकलना है, ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह उड़ता रहे, उन सब चीजों में, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ये सब इन्फेक्शन ऐसे जो हमको और आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हवा में है, स्पेशली वहां पे जहाँ पे, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जहाँ पे कुछ बिल्डिंग के काम वगैरह चल रहे हो, डस्ट वगैरह उड़ते हैं वहाँ पे, आप रोड पे चल रहे हो, कहीं रोड कच्चे रोड है वहाँ पे डस्ट वगैरह उड़ रहा हो, वहाँ पे जो उड़ेगा, तो वो सभी चीज अंदर, अगर आप प्रिकॉशन लिए हो, मास्क लगा के रखे हो, और ऐसी जगह पे तो जितना हो सकता नहीं जाएंगे तो ही अच्छा है, बाकी ब्लैक फंगस से भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस चीज के जितना हो सकता है प्रिकॉशन लेना है, केयर करना है, ये दोनों ही बीमारियां कोविड-19 प्लस ब्लैक फंगस, इस चीज से डरने की जरूरत, आप सही समय पे और सही उपचार करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, उसमें दूसरे दूसरे लोगों की बातों में आके ये करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर वो डेंजरस हो सकता है। बट इन सभी चीजों के लिए मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप वैक्सीन को ज्यादा जोर दीजिए।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है कि देखो ये वापस मेरा वो रिसर्च नहीं है, कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, बट एक हाइपोथेसिस है मेरा भी कि कोविड से पहले ये ब्लैक फंगस सबसे पहले एक स्टेप होता है कि हम हमारा हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाते रहे, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रखते रहे, कहीं ना कहीं वो हेल्थ कॉन्शियसनेस भी परफेक्टली इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली भी नहीं रहा है, और या तो एक वे बोल सकता है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है ये तो जिमिंग होता है, एक्सरसाइजिंग होता है, बट जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है ना वो इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं था, या इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं था, आज है ड्यू टू कोविड 19। अगर अगर आप
अगर ये सभी चीज़ें जो आपने
समझ लिया आपका जो ये सभी चीज़ें लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था, ऐसी सब चीज़ें हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वायरस आ सकता है, ये सभी चीज़ें भी हो सकती है, हम अपने हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा फ्री माइंड है, हम कुछ भी कहीं भी खा लिए, बाहर निकले कुछ भी खा लिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, किसी के साथ कॉन्टेक्ट में आए, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी, कभी हमने इस चीज़ के लिए इतना
छोटा छोटा भी कुछ भी होता था तो हम लोग डायरेक्ट दवाई ले लेते, कोई भी कुछ
सेल्फ मेडिकेशन भी यहाँ पे हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये है कि थोड़ा सा सर दर्द हुआ मेडिकल पे गए,
अमेरिका साइड ये सब नहीं होता, अमेरिका साइड चीज़ें वहाँ पर बोला कि अपना दो दिन
आपको ऐसे तो पहले मेडिकल से दवाइयाँ नहीं मिलेंगी,
और हर चीज़ के लिए वहाँ पे प्रोटोकॉल बना है, आप हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भी जाओगे तो जरूरी है, यहाँ पे आप आज दवाई लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर हमको कल काम पे जाना है, कल हमको ऑफिस जाना है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे दवाई देते ही नहीं है, आपका बॉडी को उस हिसाब से बना देते हैं वो लोग, दवाई मत खाओ, आपका बॉडी उस चीज़ से, जैसे आप 3 दिन से अगर फीवर आ रहा है आपको तो आपको ऐसा नहीं कि 4th दिन आपको दवाई दे देंगे, कुछ नहीं, आप ऐसे रहो, आपका बॉडी ही एंटीबॉडीज तैयार करके और उस चीज को ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो वो खाली फीवर के लिए नहीं हर चीज में लागू, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सेस होता है तब वो उस हिसाब से पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट करने का जो भी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कुछ भी हुआ सबसे पहले मेडिकल पे जाके दो गोली खाते हैं, हालांकि वो भी बहुत खराब होता है, डॉक्टर्स के लिए बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि पेशेंट एक दो गोली खा लिए, आज ये दवाई खाए कल वो दवाई खाए, होता क्या है सब दवाइयाँ एक दो दो गोलियाँ खा के पेशेंट अपने आप को रेजिस्टेंस कर लेता है वो सब दवाइयाँ, अब जब डॉक्टर के पास आप जाओगे डॉक्टर को नहीं पता होता कि आपने क्या क्या दवाई खाया है और आपको कौन सी दवाइयों का रेजिस्टेंस है, वो डॉक्टर को भी पता नहीं होता है, जब हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन देते हैं और पेशेंट को जब इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि शायद पेशेंट को ये दवाई का रेजिस्टेंस है तो वो हमको नहीं काम करा, तो फिर हम उस समय एंटीबायोटिक जो भी दवाई है उसको चेंज करके देते हैं पेशेंट को, तो उस इफेक्ट आ जाता है, तो इसलिए हम पेशेंट को हमेशा थोड़ा सा ही कुछ और किसी भी चीज़ में थोड़ा सा कुछ हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, न कि आप उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने के बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, डॉक्टर्स को भी ट्रीट करना भारी हो जाता है और पेशेंट को भी फाइनेंशियली फिजिकली हर तरह से
प्रेशर आ जाती
है। ऑफकोर्स एक बार आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जितना हो सकता है वैक्सीन लेने के लिए आप खुद भी लें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, अफवाहों पे न जाएं, वैक्सीन कम है ये अभी मैंने कहा कि एक पैंडेमिक है तो पैंडेमिक में आप सब लोगों को गवर्नमेंट भी एक साथ में सबको कुछ नहीं कर सकती है, तो ये पैंडेमिक है तो पैंडेमिक में थोड़ा सा हर चीज को लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अभी नहीं है वैक्सीन, अगर शॉर्टेज है तो आ जाएगी 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जो भी होगा, लेकिन आप वैक्सीन के लिए सबको मोटिवेट करें भाई आपको वैक्सीन लेना है और अफवाहों पे बिल्कुल नहीं जाएं, और अगर आपको फिर भी अगर कुछ सवाल है इसके बारे में इससे रिलेटेड तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, वो जरूर आपको इस चीज में गाइड करेंगे।
गाइस